श्रोताओं, यह नाटक प्रभु यीशु के जीवन चरित्र और शिक्षाओं पर आधारित है। लेखक ने प्रार्थनाओं के साथ इन नाटकों को तैयार किया है और यह ध्यान रखा है कि उद्धार संबंधी बाइबल के संदेश में बदलाव ना आ जाए। जिन पात्रों ने नाटक में भाग लिया है वे सब प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं और उनके जीवन में प्रभु के आत्मा ने कार्य किया है। चूंकि मानव की दशा आज भी वैसी ही है जैसी प्रारंभ में थी, इसलिए बाइबल का यह संदेश आज भी समयानुकूल और सार्थक है। आज के नाटक के प्रस्तुतकर्ता हैं थियोफिलुस, जिसने प्रभु यीशु के बारे में सुना और उसका एक भक्त बन गया। इस नाटक में आप सुनेंगे कि उसके मित्रों और परिवार के सदस्य की ओर से चुनौतियां मिली कि वह अपने नए विश्वास के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करे और बताए कि क्यों उसने प्रभु यीशु का शिष्य बनने का चुनाव किया। लीजिए, प्रस्तुत है थियोफिलुस की कहानी कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता और अनुग्रह से उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया।
मैं थियोफिलुस हूं। मेरा जन्म इफिसुस नाम के नगर में हुआ और मैं यूनानी हूं। आत्मसंतोष पाना, धन संपत्ति जमा करना और सुख शांति में रहना, पहले यही मेरे जीवन का लक्ष्य था। अन्य नागरिकों के समान जो यूनानी सभ्यता से संबंधित थे, मैं भी अनेक देवी देवताओं की उपासना करता था। उन देवी देवताओं में कुछ तो लकड़ी और कुछ पत्थरों के बने हुए थे और कुछ देवता तो अदृश्य थे। इन सब देवी देवताओं को खुश करने के लिए मैंने काफी धन और अपना परिश्रम खर्च किया। इनमें से किसी ने भी मुझे सच्ची शांति नहीं दी और ना ही मुझे विश्राम दिया। फिर एक दिन एक नौजवान वैद्य ने, जिसका नाम लूका था, मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया। मैंने यीशु पर विश्वास किया और यीशु ने मेरा जीवन बदल दिया। बेशक मेरे दोस्तों ने और मेरे परिवार के सदस्यों ने मेरे बदले हुए जीवन को देखा और आश्चर्य किया और बहुत से सवाल किए। हालांकि मेरा विश्वास पक्का था, तो भी मैं ये बहुत कम जानता था कि कैसे अपने विश्वास के विषय में उनसे तर्क वितर्क करूं और खास तौर से अपनी पत्नी से बातचीत कर सकूं।
प्रिय, मुझे खुशी है कि आप घर लौट आए। अरे हाँ, आपके भाई साहब और उनकी पत्नी आए थे। जानते हो, वो बहुत से सवाल पूछ रहे थे।
सवाल पूछ रहे थे? कैसे सवाल, लीडिया?
यही कि आजकल आप डायना देवी के मंदिर में उपासना के लिए क्यों नहीं जाते हैं? क्यों आपने उन बातों पर विश्वास करना त्याग दिया है जिन पर हम और बाकी लोग विश्वास करते हैं? वो कौन सी बातें हैं जिनके कारण आप समझते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं और बाकी हम सब लोग गलत हैं? और भी बहुत सारे सवाल, जैसे कि जिस यीशु की बातें आप अक्सर करते हैं वो कौन है? वो कौन सी खूबियां हैं जिसने एक मामूली से यहूदी बड़ई को अन्य बड़ाइयों से एक खास बड़ई बना दिया है? पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। आप जितने सवालों के जवाब देते हैं उतने ही ज्यादा सवाल उठ खड़े होते हैं। फिर भी आप अपने नए विश्वास में बड़े पक्के नजर आते हैं।
मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि इतिहास की मुझे कम जानकारी है और मसीह विश्वास की पृष्ठभूमि की भी जानकारी बहुत सीमित है। लेकिन मैं एक बात यकीनी तौर पर जानता हूं कि यीशु पर विश्वास रखने से पहले मेरे जीवन में ना तो शांति थी और ना विश्राम। मैं अंधविश्वास से भरा हुआ था और हमेशा मरने से डरता था। और जब से मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तब से मेरा जीवन आशा, आनंद और शांति से भर गया है। मैं अपने इस आनंद और खुशी को ठीक तरह से समझा तो नहीं सकता, परंतु एक बात जरूर महसूस करता हूं कि मैं एक नया इंसान बन गया हूं।
प्रिय, ये बात तो बड़ी अच्छी है, पर हम चाहते हैं कि आप हमें उन बातों को बताएं जिनके द्वारा आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया है।
कुछ दिनों तक मैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता रहा जो मुझसे अधिक ज्ञानी हो ताकि वह मेरे परिवार को और मेरे मित्रों को मसीह विश्वास की शिक्षा दे सके, क्योंकि मैं चाहता था कि जो आनंद और शांति प्रभु ने मेरे जीवन में दी थी उसे वे लोग भी प्राप्त कर सके और मैं स्वयं भी उन बातों को और अधिक जानने का भूखा प्यासा था जिनके बारे में डॉक्टर लूका और उनके दोस्त अक्सर प्रचार करते थे। खासतौर पर मैं उन भविष्यवाणियों और प्रतिज्ञाओं को जानने का इच्छुक था जो पवित्र शास्त्र में यीशु के जन्म लेने से पहले की गई थी। मुझे यकीन है ये संयोग की बात नहीं थी कि मुश्किल से एक ही सप्ताह बीता होगा कि डॉक्टर लूका मेरे घर के द्वार पर खड़े नजर आए।
थियोफिलस, प्रिय, क्या आप किसी मेहमान का इंतजार कर रहे थे?
मेहमान का इंतजार कर रहा था? नहीं तो, मैं किसी मेहमान का इंतजार नहीं कर रहा था। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो?
यहाँ द्वार पर एक आदमी खड़ा है और कह रहा है कि उसका नाम लूका है।
हे प्रभु, तेरा धन्यवाद।
क्या बात है प्रिय, इतनी देर क्यों लगा रहे हो?
मैं आता हूँ। लूका, मेरे दोस्त, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई, कृपया अंदर आइए।
मैं आशा करता हूँ मैं यहाँ बिना बुलाए नहीं आया हूँ। दो दिन पहले ही मेरे मन में तीव्र लालसा उठी कि मैं तुमसे मिलूं।
तुम मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर हो। तुम कब तक मेरे साथ रह सकते हो?
अरे मेरे दोस्त, जितने समय तक प्रभु चाहे मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ।
कुछ ही दिनों में लूका मेरे घर में करीब 20 या 25 ऐसे लोगों को प्रभु यीशु की शिक्षा देने लगा था जो यीशु के विषय में अधिक जानकारी पाने की जिज्ञासा रखते थे। इन लोगों में अधिकतर लोग गैर मसीही लोग थे।
अरे आज तो हाँ, ये बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए।
देखते कैसे बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलने वाले।
आप सब लोगों का स्वागत है। कृपया शांति से सुने।
अच्छा,
पिछले कुछ समय से आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते थे कि मैं क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। हो सकता है कुछ लोग मेरे जवाब से संतुष्ट ना हो। आप लोगों की तरह प्रभु यीशु के बारे में मेरी जानकारी भी बहुत कम है। मैं यीशु का पूरा इतिहास नहीं जानता। मैं आज लोगों का परिचय एक ऐसे व्यक्ति से करवाना चाहता हूँ जिन पर मैं पूरा भरोसा करता हूँ कि वह आप लोगों के हर प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से दे देंगे। वह व्यक्ति हैं डॉक्टर लूका, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, जो फिलिप्पी नगर के रहने वाले हैं।
धन्यवाद थियोफिलस, आपने तो मुझे काफी बड़ा काम सौंप दिया है। प्रत्येक मित्र को मेरी शुभकामनाएं। आप लोगों ने यहां हाजिर होकर मेरा मान सम्मान बढ़ाया है। सबसे पहले मैं आपको अपने विश्वास के बारे में बताना चाहूंगा, फिर आप सबको मौका होगा कि आप अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रारंभ में परमेश्वर ने, अर्थात एक सच्चे परमेश्वर ने, आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर ने मानव जाति की भी सृष्टि की। उसने मानव को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया और वो चाहता था कि मनुष्य से संगति करे, लेकिन बाद में मानव ने धोखा खाया और परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। इस तरह मानव और परमेश्वर के बीच आपसी संगति टूट गई। हम सभी में एक इच्छा पाई जाती है कि हम फिर से परमेश्वर के साथ संगति में जुड़ जाएं, चाहे मनुष्य किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो। सब में परमेश्वर के साथ संबंध रखने की इच्छा होती है। आगे चलकर इसी प्रेमी परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि उसके द्वारा वो संगति जो मानव द्वारा आज्ञा उल्लंघन और विद्रोह करने से टूट गई थी फिर से स्थापित की जा सके। ये स्वयं परमेश्वर की योजना थी।
श्रीमान, क्या यह सब जो आपने बताया एक नया विचार है? क्या आपने या आपके यीशु ने इसे गढ़ा है?
जो कुछ अभी मैंने आप लोगों को बताया है वो मेरा अपना आविष्कार नहीं है और ना ही आप लोगों को किसी क्रोधी देवता की ओर से भयभीत करने वाली मनगढ़ंत कहानी है, बल्कि ये करीब करीब 1500 वर्ष पुरानी परमेश्वर की योजना है, जिसका प्रकाशन एक व्यक्ति पर किया गया जिसका नाम मूसा था। मैं अपने साथ उन पवित्र पुस्तकों को भी लाया हूं जिसमें मूसा के उपदेश लिखे हुए हैं जो उसने पाए थे। यदि आप लोग निष्पक्ष हों और सत्य के सच्चे खोजी रहें, तो मैं निश्चय के साथ कह सकता हूं कि जिन सत्य बातों का हम अध्ययन करेंगे उन पर आप लोग भी विश्वास करने लगेंगे।
डॉक्टर लूका ने पवित्र लेखों में से जिस पहली पुस्तक के बारे में बताया, उन्होंने उस पुस्तक का नाम उत्पत्ति कहा, जिसका अर्थ है आरंभ। ये पुस्तक बताती है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, भूमि और समुद्र की, और उन सब की जो भूमि और समुद्र में पाए जाते हैं, सृष्टि की। फिर उसने मनुष्य की भी सृष्टि की। यह पुस्तक यह भी बताती है कि किस प्रकार परमेश्वर उस वाटिका में, जिसमें उसने प्रथम स्त्री पुरुष को रखा था, उस दिन तक चलता फिरता रहा जब तक कि उन्होंने शैतान के द्वारा धोखा खाकर परमेश्वर के विरुद्ध आज्ञा उल्लंघन का पाप न कर दिया, और उस पाप के परिणाम स्वरूप मनुष्य पापी बन गया और परमेश्वर की निकटता से अलग कर दिया गया। बेशक डॉक्टर लूका की इन बातों ने उपस्थित लोगों के बीच अच्छा वाद विवाद और विचार विमर्श का वातावरण पैदा कर दिया।
श्रीमान लूका जी, आपकी पुस्तक तो बड़ी मनोरंजक है, लेकिन हमारे पुरोहितों के पास भी पुस्तकें हैं। उनमें तो लिखा है कि बहुत सारे देवी देवताओं ने मिलकर इस पृथ्वी को, आकाश को और उन सब को जो हमारे आसपास पाया जाता है बनाया है। क्या आप एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विषय में, जिसका आप प्रचार कर रहे हैं, कोई और अच्छा तर्क पेश कर सकते हैं?
आपका सवाल बहुत अच्छा है मेरे दोस्त। मुझे एक बात बताओ, क्या उन सब वस्तुओं में से जो आप देखते हैं एक नियम नहीं पाया जाता? क्या सूर्य, चंद्रमा और तारागण आकाश में अपनी निर्धारित धुरी पर नहीं घूमते? क्या मौसम विधि के अनुसार नहीं बदलते? क्या पेड़ पौधों के बढ़ने में एक नियम आप नहीं देखते? यदि आप सेब का बीज बोते हैं तो क्या सेब का पेड़ ही बढ़कर नहीं फलता? यदि बहुत से देवी देवता इन विभिन्न वस्तुओं की सृष्टि करने के काम पर नियुक्त किए गए होते, तो क्या ऐसा क्रम या नियम हम सृष्टि में देख पाते?
श्रीमान, आपका तर्क इतना अच्छा और उपयुक्त है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। यह बात सदा ध्यान में रखने की और सोच विचार करने की है।
क्या आप तर्क द्वारा समझाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं ताकि हम आंख बंद करके आपकी पुस्तक की बातों को स्वीकार कर लें? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम इंसान एक ही परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए हैं? और आपकी इस बात का क्या अर्थ है, परमेश्वर का स्वरूप?
परमेश्वर के स्वरूप से मेरा मतलब शारीरिक रूप से नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अनंत आत्मा है और पशुओं को छोड़कर मनुष्य भी अनंत आत्मा है। भूमि पर चलने वाले पशु, समुद्र की विभिन्न मछलियां, आकाश के पक्षी, ये सब कुछ मनुष्य के उपयोग के लिए हैं, उसके भोजन या मनोरंजन के साधन हैं। मानव इन सबसे श्रेष्ठ और भिन्न है। परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र इच्छा दी है कि वो चुनाव कर सके। क्या ये सब बातें आपको उचित नहीं लगती?
मनुष्य की सृष्टि के बारे में मुझे अब सही जानकारी मिल गई है। ये जानकारी पहले मेरे पास नहीं थी।
डॉक्टर लूका जी, यदि इस एक ही परमेश्वर ने हमें आजादी यानी चुनाव करने की स्वतंत्र इच्छा दी है, तो मैं क्यों नहीं अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करके यह चुनाव कर लेता कि उसके समान बनूं? मुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता क्यों है भला?
जो सवाल अभी तक तुमने पूछे वे बड़े चुनौतीपूर्ण रहे हैं। पर यह सवाल कि मनुष्य को क्यों एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और उसके बाद खड़ा होने वाला दूसरा प्रश्न कि यह उद्धारकर्ता कौन है, ये बड़ा गंभीर और विस्तृत विषय है। इसलिए इन विषयों पर हम बाद में देखेंगे। जैसे ही मैंने आप लोगों के शहर में प्रवेश किया, तो मैंने जगह जगह बड़े बड़े और खूबसूरत मंदिर बने हुए देखे जो भिन्न भिन्न देवताओं के नाम के थे, और गलियों में फेरी वाले तरह तरह की मूर्तियां बेच रहे थे जो पीतल, लकड़ी और चिकने खूबसूरत पत्थरों की बनी हुई थी। मैंने अनेकों जगह ऐसी मूर्तियां बिकते देखी हैं। जहां भी यात्राएं की, ऐसा ही देखा है। मैंने देखा है कि लोग बड़े चाव से इन्हें खरीदते हैं। इससे बढ़कर बात यह देखी है कि लोगों में परमेश्वर से संपर्क करने की उससे संबंध स्थापित करने की भूख है। पुरोहितों को दान दक्षिणा दी जाती है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीरों को यातनाएं दी जाती हैं। परमेश्वर की खोज करना या परमेश्वर का आदर भक्ति करना या अनेकों देवी देवताओं को प्रसन्न करना ऐसी बातें हैं जो संपूर्ण संसार में पाई जाती हैं। क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं या मेरी बातों का इनकार करते हैं?
जो जो बातें मैंने देखी हैं उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आपने जो बातें बताई हैं वे एकदम सच हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि असभ्य जातियों में भी ऐसी पूजा पाठ की विधियाँ पाई जाती हैं जिनमें बलिदान चढ़ाया जाता है। सबसे ज़्यादा सभ्य समझे जाने वाली हमारी जाति में भी अनेकों कीमती पत्थरों से बनी इमारतों के मंदिर बनाए जाते हैं जहाँ परमेश्वर की खोज की जाती है। मैं तो आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो कुछ आपने बताया है वह सत्य है। हम सभी में परमेश्वर से मेल मिलाप और संबंध रखने की इच्छा पाई जाती है, लेकिन हम अपने आप को किसी कारणवश अयोग्य पाते हैं।
मैं समझता हूँ अगर आप अपने आप को अयोग्य पाने की बजाय ऐसा कहें कि मैं अपने आप को दोषी पाता हूँ तो ज्यादा उपयुक्त होता। एक और शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हैं जो आपकी दशा को अच्छी तरह बता सकता है, और वो शब्द है कायल होना, अर्थात ये मान लेना कि मैं अपराधी हूँ। क्योंकि हमारी आत्मा हमें कायल करती है कि हमने अपराध किया है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हम कायल किए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा से बातें करता है। चाहे हम कितना ही कठिन परिश्रम क्यों ना करते हों या हम कड़े अनुशासन के साथ क्यों ना जीवन व्यतीत करते हों, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है, हम फिर भी पाप करते रहेंगे। मनुष्यों के धार्मिक कर्म कांडों, उसके द्वारा चढ़ाए गए बलिदानों और सुगंधित द्रव्यों से परमेश्वर के साथ उसके टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ नहीं सकते। यही कारण है कि हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है।
अब मैं आपकी सारी बातें समझने लगी हूँ, पर दिक्कत यह है कि उद्धारकर्ता कौन है? आपके पास इसका उत्तर है? मैं मानती हूँ डॉक्टर लुका, ऐसे हजारों लोग हैं जो दावा करते हैं कि उनके पास भी उत्तर है।
जब डॉक्टर लुका समूह में जमा लोगों को शिक्षा दे रहे थे तो उन्हें मैंने भी सुना था और प्रार्थना भी कर रहा था। हर सत्र के समाप्त होने के बाद हम दोनों घुटनों के बल झुक जाते थे और साथ साथ सामर्थ और बुद्धि प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे ताकि अगला सत्र शुरू करने में परमेश्वर सहायता करे, और प्रभु अपने अनुग्रह से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता था। मेरे प्रिय मित्र लुका, आपके विचारों और बातों से मेरा विश्वास और भी बड़ा है। आपने बहुत अच्छी तरह समझाया और बड़ी ही स्पष्टता से समझाया। आपकी बातों को समझने के लिए बुद्धिजीवी होना आवश्यक नहीं है।
धन्यवाद थियोफिलुस, पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो संदेश मैंने दिए हैं वे मेरे नहीं हैं, ये पवित्र आत्मा के संदेश हैं जो मेरे द्वारा बोला है। आपके मित्रों ने और आपके परिवार के सदस्यों ने जिस प्रकार के व्याकुल कर देने वाले प्रश्न पूछे थे, ऐसे प्रश्नों का अक्सर मैं सामना नहीं करता। मुझे आपकी प्रार्थनाओं का सहयोग मिला, साथ ही अपने संदेशों में परमेश्वर की आशीष महसूस कर सका।
डॉक्टर लुका अगले 4 महीनों तक हर शनिवार को शाम के समय उन पवित्र शास्त्रों में से शिक्षा दिया करते थे जो वह अपने साथ लाए थे, और समूह के लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी दिया करते थे।
आज से हम उन भविष्यवक्ताओं के लेखों का विस्तृत अध्ययन करना आरंभ करेंगे जिन्हें परमेश्वर ने अपना प्रकाशन दिया। इन लेखों में हम देखेंगे कि उद्धारकर्ता के संबंध में क्या लिखा है, उद्धारकर्ता कैसा होगा, वो कहाँ पैदा होगा। हम उसके वंश का भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके कार्यों के बारे में क्या भविष्यवाणियां की गई थी, और वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत करेगा और किस ढंग से उसकी मृत्यु होगी। हम ये भी देखेंगे कि उसका एक शिष्य उसे धोखा देकर पकड़वा देगा, इसकी पहले से ही भविष्यवाणियां कर दी गई थी। उसके मृतकों में से जीवित हो उठने की भविष्यवाणी पर भी हम विचार करेंगे जिसका वर्णन भविष्यवक्ताओं ने पहले ही कर दिया था।
आप कितनी भविष्यवाणियों के बारे में बातचीत करेंगे?
यूं तो 300 से अधिक भविष्यवाणियां पवित्र लेखों में पाई जाती हैं जिनका सीधा संबंध हमारे अध्ययन से है। लेकिन हम उन सभी भविष्यवाणियों को अपने इस सीमित समय की कक्षाओं में अध्ययन नहीं कर पाएंगे।
क्या मूसा ने ये सारे भविष्यवाणी की?
नहीं, मूसा की थोड़ी ही भविष्यवाणियां लेखों में पाई जाती हैं। अधिकतर भविष्यवाणियां अन्य भविष्यताओं द्वारा 1000 वर्षों के दौरान की गईं।
क्या आप साबित कर सकते हैं कि वे बातें जिन्हें आप भविष्यवाणी कहते हैं यीशु के जन्म से पहले की गई थी?
ये सब इतिहास की बातें हैं जिसका समर्थन आपके यूनानी इतिहासकार स्वयं करते हैं कि जिन पुस्तकों में से मैंने पढ़कर सुनाया है वे 1000 वर्ष की अवधि के दौरान लिखी गईं और यीशु के जन्म से 300 वर्ष पहले उन्हें संकलित किया गया और उन्हें वर्तमान स्वरूप दिया गया। आइए हम उन भविष्यवाणियों की विश्वस्तता के बारे में या इनकी सच्चाई के बारे में भी देखेंगे कि ये कसौटी पर खरी उतरी थी या नहीं।
आपने जिन भविष्यवाणियों का वर्णन किया है उसकी पूर्ति का प्रमाण भी होना चाहिए।
भविष्यवाणी की पूर्ति होने का एक भरोसेमंद गवाह भी होना चाहिए।
भविष्यवाणियों में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इस बारे में जो कुछ आप लोगों ने अभी सुझाव दिए हैं उनसे मैं सहमत हूँ। तो आइए हम अध्ययन आरंभ करते हैं।
अगले कुछ अध्ययन सत्रों में डॉक्टर लूका ने हमें भविष्यवाणियों का अध्ययन कराया। उत्पत्ति नामक पुस्तक से हमने सीखा कि उद्धारकर्ता स्त्री के द्वारा जन्म लेगा। यशाया भविष्यवक्ता ने बताया कि वह स्त्री पवित्र कुंवारी होगी। भजन संहिता की पुस्तक से हमने सीखा कि वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उत्पत्ति, गिनती और यर्मिया की पुस्तक में हमने देखा कि उसका वंश इब्राहिम और दाऊद राजा की पीढ़ी से संबंधित होगा। यीशु के शिष्य मती ने अपनी पुस्तक में उस उद्धारकर्ता के वंश का संबंध उसके सांसारिक पिता यूसुफ तक दाऊद राजा के कुल से बताया। मीका भविष्यवक्ता ने बताया कि वह उद्धारकर्ता बैतलहम नगर में जन्म लेगा। भजन संहिता की पुस्तकों से हमने अध्ययन किया कि पूर्व देशों के लोग आकर उसे भेंट चढ़ाएंगे। भविष्यवक्ता यशाया बताता है कि वह अनेक आश्चर्य कर्म करेगा। उद्धारकर्ता के जन्म से 500 वर्ष पहले जकरिया नबी ने बता दिया था वह उद्धारकर्ता गधे पर सवार होकर यरूशलम में प्रवेश करेगा। इसके बाद डॉक्टर लूका ने सीधे यशाया की पुस्तक से पढ़कर हमें सुनाया।
निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं को आप सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। वो परमेश्वर द्वारा मारा कूटा गया और दुर्दशा में डाला गया। हमारे ही अपराधों के कारण वो बेधा गया, हमारे अधर्म के कामों के लिए वो कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने अर्थात परमेश्वर ने हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया।
अपने अध्ययन के द्वारा हम जान सके कि ये विशिष्ट भविष्यवाणियां यीशु के उद्धारकर्ता के रूप में आने से सैकड़ों वर्ष पूर्व की गईं। इसके बाद डॉक्टर लूका ने हमें इन भविष्यवाणियों की पूर्ति के विषय में अध्ययन कराया जिनका वर्णन सुसमाचारों में पाया जाता है। अध्ययन के दौरान लूका ने इस बात पर विशेष बल दिया कि मसीही धर्म अन्य उन धर्मों से अलग हटकर है जिनमें मनुष्य को स्वयं अपने प्रयास से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। इसके विपरीत मसीह धर्म में स्वयं यहोवा परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए प्रबंध किया और अपने पुत्र को हमारे पापों के दंड की कीमत चुकाने के लिए भेज दिया। उसने हमारे बदले में मृत्यु दंड सहा और फिर परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। केवल वही ऐसा परमेश्वर है जिसने उद्धारकर्ता के दूसरे आगमन की और जो विश्वास लाते हैं उनके अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की है। इस गहरे अध्ययन के फलस्वरूप दो जनों ने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। लूका सलाम, मैं जानता था कि आप यहीं मिल सकते हैं।
सलाम थियोफिलुस। हाँ सलाम लीजिया, मैं आपके इस खूबसूरत बगीचे में भोर का आनंद लेने के लिए आ गया था। अब समय आ गया है कि मैं आपसे और इस शांत स्थान से विदा लूं।
आपका आभार व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। आपके आने से पहले मैं ये बात समझ ही नहीं पाती थी कि मेरे पति ने देवी देवताओं की ओर से क्यों अपना मुख फेर लिया है, लेकिन हमारे सारे प्रश्नों का इतने धैर्य के साथ आपने उत्तर दिया और हमारी शंकाओं का समाधान किया। यही कारण है कि मैंने भी अपने पति की तरह उद्धारकर्ता में विश्वास करना शुरू कर दिया है। अब मैं भी यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने लगी हूँ।
और तभी आप भी समझ सकें कि सबसे बड़ा आनंद क्या होता है। जैसे मैंने कहा था कि आप लोग उद्धार पाएं, यही मेरा सबसे बड़ा आनंद है, जिसे व्यक्त करना कठिन है।
जब लोगों को पता चला कि आप जा रहे हैं तो ये उपहार उन्होंने भेजा है। जब तक हम दोबारा मिलेंगे तब तक हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं।
प्रियो, आप लोगों की उदारता और मान सम्मान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निकट भविष्य में प्रयास करूंगा कि उन सब बातों का जो हमें प्रभु यीशु के चश्मदीद गवाहों के द्वारा प्राप्त हुई है, आपको उनका विवरण लिख भेजूं, ताकि आप और आपके मित्रगण उन बातों की वास्तविकता पहचान सकें जो मैंने सिखाई है। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोग मेरी प्रार्थनाओं में सदा याद किए जाते रहेंगे। परमेश्वर दूसरों को सुसमाचार सुनाने में आपका सहायक रहे और आशीष प्रदान करता रहे।
लूका ने अपना वायदा पूरा किया और थियोफिलुस को पत्र लिखता रहा। उसी के परिश्रम के फल स्वरूप आज पवित्र बाइबल में उसके द्वारा रची गई दो पुस्तकें, लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम नामक पुस्तकें पाई जाती हैं। अपने सुसमाचार में उसने प्रभु यीशु के जन्म व कार्यों का वर्णन किया है, तथा प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में उसने कलीसिया की स्थापना और उसके विकास का चित्रण किया है। यदि आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, तो हमारा विश्वास है कि हमारे नाटकों को सुनकर आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी कि प्रभु यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकें। यदि आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि आप एक पापी हैं। इस बात पर विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपके उद्धार के लिए अपने पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया। अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु पर विश्वास लाइए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।